आज रात की क्लास है 1 अक्टूबर 1967। बाप और बच्चों का मिलाप, बाप को भी मीठा लगता है और बच्चों को भी मीठा लगता है। क्या पहचान बताई? बच्चों की और बाप की
मीठा लगता है
कि जब मिलते हैं तो बच्चों को भी मिठास आती है और बाप को भी मिठास आती है, और जिनको मिठास नहीं आती है उससे क्या साबित होता है कि न वो बच्चे हैं और न उनका वो बाप है। किसको? अच्छा, किसको जास्ती मीठा लगता है, बच्चों को जास्ती मीठा लगता है या बाप को जास्ती मीठा लगता है? कोई ने कहा बच्चों को जास्ती मीठा लगता है? बाबा कहते हैं नहीं, बाप को जास्ती मीठा लगता है। अच्छा, उनको जास्ती मीठा लगता है। बाबा तो जानते हैं कि सारे विश्व को हेवन बनाना है, वो तो है ही निश्चय बुद्धि। उनको आए करके विश्व को स्वर्ग बनाना ही है, बच्चे भूल जाते हैं। इस कारण सर्विस ठीक नहीं चलती है। और बाप को तो आत्माओं के ऊपर सदा काल लव है, उसका नाम ही है सदाशिव। बाकी बच्चे मददगार चाहिए। और मददगारों में ही रोला पड़ता है। मददगार नंबर वार बनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग तो बन ही जाएगा। इतने भी रोले पड़े या भले नंबर वार मददगार बने, बाकी बच्चों को हिम्मत करके खुश मिजाज हर्षित मुख बनना है। बल माया के रोले पड़ते रहे, बच्चे दैवी गुण धारण नहीं कर सकते हैं। बाप को भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको भूलना तो नहीं चाहिए। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, یاد میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور روز کی مرلی بھی ضرور سننی ہے. دیکھنا ہے کوئی ڈیٹ کی مرلی مس تو نہیں کی ہے. بہت بچے آتے جاتے ہیں تو بیچ کی مرلی رہ جاتی ہے, دھیان نہیں دیتے. کوئی تو پھر سمجھ لیتے ہیں ہم نے سارا گیان سمجھ لیا. پھر بھی باپ تو یکتی بتلاتے ہی ہیں, دھارنا کر کے سروس میں لگ جاؤ. مکھی بات ہے باپ کو یاد کرنے کی. تم جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتے ہیں کہ پرشوتم بننے کے لیے باپ کے پاس آتے ہیں. پانچ سو سات سو کروڑ پرش ہیں, ان میں اتم کوالٹی کے کون سے ہیں؟ جنہیں کہے اتم تے اتم کوالٹی. سوریانسی تو ستیگ میں سب ہوں گے, دو کروڑ بھی ہوں گے, ان سب کو اتم کوالٹی کہیں. ستیگ کے انت میں جنم لینے والے وہ بھی ستیگ ہی کہے جائیں گے. جنم تو ان کو چھ سات کم ہو جائیں گے تو ان کو اتم کہیں. اتم پرش بننے کے لیے باپ کے پاس آنا پڑے. جو باپ کے پاس آتے ہیں اور اتم پرش بنتے ہیں یتھا راجا تتھا پرجا, وہ کتنے ہیں؟
ساڑھے چار ہزار.
باپ کتنا اونچ پڑھاتے ہیں تو کتنا الاس میں رہنا چاہیے. یہ لکشمی نارائن کا چتر لے کر کے پریکرما کرو. یہ بھارت شریشٹاچاری تھا, اب شریشٹاچاری نہیں ہے. ہم پھر سے شریشٹاچاری بناتے ہیں. جو بھارت سورگ تھا ابھی کنگال کیسے بنا ہے یہ کوئی نہیں جانتے. اس لیے باپ سمجھاتے ہیں سب پجاری ہیں. پجاری ہیں تو ضرور پتت ہیں. تمو پردان دنیا میں کوئی پوتر نہیں ہو سکتا. ہے باقی صاحب بھکتی مار کی اندھ شردھا, اور بھارت تو اندھ شردھا میں نامی گرامی ہے. کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ابھی تم سمجھتے ہو نمبر وار پرشارتھ انوسار. ہم سوچھ بن رہے ہیں. भारत को महादानी कहा जाता है। बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। जो बाप हमें देते हैं वो तुम भी देते रहो। एक मत होकर के सर्विस को बढ़ाते रहो। तुम बच्चों में ये ज्ञान है, दुनिया तो जैसे अंधी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि नौदा भक्ति करने से साक्षात्कार हुआ, नहीं, हिम्मत की तो साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चे भी हिम्मत से पुरुषार्थ करेंगे, मुझे याद करेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पुरुषार्थ से ऐसा बनना है, बाकी आशीर्वाद कृपा आदि ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। पुरुषार्थ बिगर कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। बाप कहते हैं तुम सब चिल्ड्रंस हो, कहते हैं तुमको इतने पैसे दिए, तुम सब खलास कर दिया। कौन से पैसे दिए?
ज्ञान रत्न।
कितने ज्ञान रत्न दिए और सारे ही ज्ञान रत्न खलास कर बैठे। कब की बात है? है? द्वापर के आदि में भी तो शास्त्रों में जो लिखा था वो बहुत कुछ सच्चा था। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, तो शास्त्र भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। द्वापर के आदि में जो शास्त्र लिखे गए वो फिर भी सात्विक स्टेज में थे। बाद में शास्त्र भी इंटरप्रिटेशन अनेक प्रकार का होने से सतो रजो तमो होते गए। लेकिन बाप ने जो हमको ज्ञान रत्न दिए वो ज्ञान रत्न कहाँ खलास हो गए? त्रेसठ जन्म में ही खलास होते हैं या बाप के दिए हुए ज्ञान रत्न संगम युग में भी खलास हो जाते हैं? संगम युग में भी खलास होते हैं। तो पूछा कितने पैसे दिए वो सब कहाँ खलास कर दिए? अरे कहीं तो गमाए होंगे।
मिंद्रा में लगा दिया
है।
मिंद्रा में
यहाँ संगम युग में कहाँ मंदिर में अलमारियां बना दिया। हाँ सेंटर वेंटर तो खोलते हैं। अनुभवी तो सब है। बुद्धि विकारी बनती है, विकारी कर्म होते हैं, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। वेद का बाप सब बताए देते। तुम डबल सिरताज थे, फिर क्या हुआ? संगम युग में भी जब नए नए ज्ञान में आते हैं, चाहे बेसिक में आते हैं चाहे एडवांस में आते हैं, चेहरे पर रूहानियत दिखाई पड़ती है, सात्विक स्टेज मालूम पड़ती है। रूहानियत माना पवित्रता का ताज, और बड़े उमंग उत्साह से ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी भी धारण कर लेते हैं। यहाँ है जिम्मेवारी का ताज और वहां होता है स्थूल ताज। तो डबल ताज घुमाए देती है, बाप ने समझाया तुम बच्चे खुद भी वंडर खाते हो। डबल ताज बन करके हम बच्चे नीचे उतरते उतरते क्या हो गए? इसको कहा जाता है उत्थान और पतन की कहानी। कल पहले जो समझा था, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वही समझेंगे। चौरासी जन्म सब थोड़े ही लेंगे, जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं क्या सब 84 जन्म लेंगे? कोई होशियार बच्चा हो तो बैठ करके एवरेज हिसाब निकाल सकते हैं, परंतु ये माथा मारना भी फालतू है। इससे अच्छा तो बाप की याद में बैठ माथा मारे। पेट भरेगा याद से। खुदाई खिदमतगार तो तुम बच्चे ही हो, बाप सबको लिखते हैं। याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जावे। बेड़ा कौन सा है? ये शरीर रूपी नैया ही बेड़ा है। विषय बेहतरीन नदी में बेड़ा पड़ा हुआ है। नदी कहो विषय सागर कहो, परंतु याद की यात्रा से बेड़ा पार हो जावे। और तुम इस पार से विषय सागर से उस पार क्षीर सागर में चले जाएंगे। जितना याद करते हैं घड़ी घड़ी नजदीक आते जाते हैं। कहीं के नजदीक आते जाते हैं, क्षीर सागर के नजदीक आते जाते हैं। कोई विलायत से लौटते हैं तो याद आता है हम जा रहे हैं। तुम भी दिन प्रतिदिन नजदीक आते जाते हो। यात्रा तुम अभी करते हो। ये जाने की यात्रा है, इस यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं। पावन होकर के हम जाते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद फिर ऐसे हो जाते हैं। ये रूहानी यात्रा है, गीत भी है, रात के राही थक मत जाना। अब रात को तो यात्रा करते नहीं है, भक्ति मार्ग में रात को यात्रा करते हैं क्या?
रात को
यात्रा, फिर ये गीत क्यों बना है? बाप रात्रि में आते, सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है, तब बाप तुमको ज्ञान का सोजरा देते हैं, तुम यात्रा करते हो, तो तुम हो रात के यात्री। बाप कहते हैं तुम अथक हो करके पुरुषार्थ करते रहो, वो भक्ति मार्ग में तो दिन में यात्रा करते हैं, रात में थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और तुम्हारी यात्रा तो अथक है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्याण हो। बच्चों को अभी समझ में आया है, बाप की जो भी समझानी है वो अब इमर्ज हुई है। संकल्प उठता तब है जब ड्रामा में पार्ट होता है, नहीं तो संकल्प भी नहीं उठता। बाप कहते हूँ बहू कल पहले मुआफिक, मैं समझाता रहूंगा। ये अति सहज भी है, फिर पुरुषार्थ करते करते माया की जीत भी हो जाती है। माया ग्रह हप कर लेती है, हप किया है और हप करेगी, तो बाप समझाते हैं न पढ़े हुए हो तो कोई हर्जा नहीं है। ये तो समझने की बात है, पाप आत्माओं को दान देने से पाप लग जाता है, इसलिए सब प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं। भोजन भी शिव बाबा को याद करके खाना है, कुछ भी होता है सब पाप को बतलाए दो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाएंगे। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, यही श्रीमत है। तो बच्चों को अतीन्द्रिय खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर याद भी जरूर करना पड़े तो विकर्म विनाश हो। बहुत याद करेंगे तो बहुत खुशी होगी, कोई से भी बोलो बाप को याद करेंगे तो पावन बन करके विश्व का मालिक बन जाएंगे। अनुभव होगा कि याद से बहुत खुशी होती है। अच्छा ओम सर दूसरा रात्रि क्लास है दो अक्टूबर 1967 का। इस बारी की मैगजीन बहुत अच्छी है। दिन प्रतिदिन समझानी अच्छी मिलती रहती है तो मैगजीन भी सुधरती रहती है। बच्चों को डायरेक्शंस भी मिलते रहते हैं। इस बारी शिव जयंती की हॉलीडे भी गवर्नमेंट ने रखी है। फिर भी पत्र लिखना चाहिए। किनका स्टैंप्स निकालना चाहिए? किनका? उनकी जयंती मनाते हैं तो उनका चित्र भी अखबार में डाल देते हैं, स्टैंप भी बनाते हैं। तो सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि सिर्फ छुट्टी ही से काम नहीं चलेगा, शिव जयंती का स्टाम्प भी निकाले। कौन सा स्टाम्प? त्रिमूर्ति शिव का, क्योंकि उस समय मैगजीन भी त्रिमूर्ति के नाम से निकलती थी। एक बार त्रिमूर्ति शिव का चित्र भेज देना चाहिए और त्रिमूर्ति की महिमा लिखनी चाहिए। इन तीन मूर्तियों का स्टाम्प तो जरूर होना चाहिए। ये तीन मूर्ति शिव भगवान भारत को सतयुग का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर लिखना चाहिए। लिखेगा वही जिनको अच्छा शौक है सर्विस का। फिर इसकी कॉपी भी हर प्रांत में भेज देनी चाहिए। सभी चीफ मिनिस्टर आदि के पास, मोस्ट बिलेवड गॉड फादर जो सर्व का सदगति दाता है, इनका स्टैंप्स निकालना चाहिए। वो गॉड फादर इस समय भारत की सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पत्र कुछ न कुछ ब्रह्मा कुमारियों के जाते रहना चाहिए। ऐसा कुछ करना जरूर चाहिए जो आवाज निकले। बाप भी आवाज करते हैं, मन मना भव अर्थात स्वर्ग की स्थापना राजयोग से कर रहे हैं। जिनको नशा चढ़ता है वो युक्तियां निकालते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भारत की खास और विश्व की आम सेवा कर रही है। ऐसी ऐसी बातें नोट करके लिखनी चाहिए। भारत को सतवी विश्व का राज्य देते हैं। बाकी और जो धर्म हैं, उनको मुक्ति देते हैं। अर्थात सबको दुख से लिबरेट करके सुख शांति देते हैं। तो इनका एक कैंप्स जरूर होना चाहिए। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। कुछ न कुछ लिखा तो ऐसे हो जाएगा। भाई बहनों को जगाना है, क्योंकि सांप कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े। मुख्य है याद की यात्रा। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। आश्रय गुण सब निकाल जाना चाहिए, सब ऊंचे पद पाए सकेंगे। नहीं तो कोई कितनी भी सर्विस करे और आश्रय गुण भी भरे हुए हो तो सर्विस इस सर्विस में बदलती रहेगी। और ऊंच पद पाने के बजाय नीच पद बन जाएगा। तो ये भी बताया कि आसुरी गुण निकलने बगैर ऊंच पद कोई पाए नहीं सकेंगे। बच्चों को तो बहुत सहज बताते हैं। बहुत सहज बताते हैं। ये पार्सलिटी क्यों है? जो बाप के बच्चे हैं अपने बच्चों को बहुत सहज बताते हैं। किनको? अपने बच्चों को। वो कौन है, कितने हैं? बाप के अपने बच्चे कितने हैं जिनको बहुत सहज बताते हैं? 4.5 लाख उनको बहुत सहज बताते हैं। और बाकी के लिए कठिन क्यों हो जाता है? उनको कठिन करके बताते हैं क्या? बाप तो सबको सहज करके बताते हैं। बच्चे सहज सहज बातों को उठाए लेते हैं। लेकिन और धर्म में जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, वो बाप के सुनने के बाद पूरी संतुष्ट नहीं होती, तो औरों से भी सुनती रहती है। उनका ज्ञान विविचारी बन जाता है। विविचारी ज्ञान बनने के कारण फिर सहज नहीं भासता है। इसलिए बोला कि बच्चों को बहुत सहज करके बताते हैं। बाप को याद करो, मौत सबके लिए है। बाप कहते हैं ये मुक्ति धाम जाने का है, तो अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अपने घर में सेंटर खोल करके मित्र संबंधियों आदि को समझाना है। और अपने अंदर से 5 विकारों को भी हटाना है। कोई अचानक मर जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुतों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। उन बिचारों के पैसे बैंक आदि में ही रह जाते हैं। तो इस समय तो पैसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया में भेज देना चाहिए। बाकी तुम्हारे पैसे बाप तो खावेंगे नहीं। कहते हैं तुम अपने पैसे नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो। यहाँ पैसे पदम हो जाएंगे। तुम कौड़ी से पदमा पदम पति बनते हो बाप की याद से, और तो कोई तकलीफ नहीं देते। जितना धन है उस धन के नशे में सब रहते हैं। तुमको भी इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के नशे में रहना चाहिए। मरना भी शिव बाबा की याद में, और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। सब बच्चों को खाना तो मिलता ही रहेगा। अगर कोई के पास जास्ती है तो कुछ जमा कर दो, सेंटर खोलो, मददगार बनो। अभी तुमको कोई प्लाट है, स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर दो। साइंस वाले तो मून आदि में चले जाते हैं। गरीब माताएं बोलती हैं ये तो दो चार पैसा दे देते हैं, स्वर्ग में इनको अशर्फियां दे देना। बाप है ही गरीब निवास। गरीब भारत को भी साहूकार बनाते हैं, और यहाँ गरीबों को ही वर्षा मिलता है। करोड़पति आदि को वर्षा नहीं मिलता है। क्यों? ब्रह्मा बाबा करोड़पति नहीं थे क्या? उनको वर्षा नहीं मिलता है स्वर्ग का?
जीते जी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। जीते जी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता।
हाँ, इससे जन्म रहते रहते उनको वर्षा नहीं मिलता है। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। तुम सब आत्माओं का एक बाप है। वो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। परिवार में रहते पवित्र बनना है तो जो भी कुमार कुमारियां हैं गृहस्थी बना लें क्या?
माता पिता के घर हैं तो गृहस्थी है।
हाँ, यहाँ तो बेहद का परिवार बन गया। बेहद का परिवार है, बेहद की गृहस्थी है। जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती तो उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं। कहते बाबा ने तो कहा है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं छी छी दुनिया में रहते कमल फूल समान रहो। पहले तुम समझो हम आत्मा हैं। अभी बाप भूल को अभूल बनाते हैं। ऐसे भोले लवली बाप को एक भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति करते आए, अंत को नहीं जानते। तो इन बाप का स्टैंप तो भारत में जरूर होना चाहिए। बाल त्रिमूर्ति बना दे। अपना बनाया हुआ चित्र उनको भेज देना चाहिए। और उनको बोलना चाहिए कि आप भी यह बनो, आपका भी ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व का रचयिता बाप ही है। सर्वसेवल बच्चों की बुद्धि में ये बातें बैठती हैं, तो जांच करनी चाहिए स्टाम्प के ऊपर कौन है, बाप को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समझते हैं हम कर सकते हैं पर नहीं करते हैं तो पद भी कम हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए अच्छा पद पाने की। पैसे हैं तो सुख होता है। अभी बाप तुमको धन कितना देते हैं और आयु भी तुमको निरोगी देते हैं, तो अपने घड़ी अपने इसको अपने से घड़ी घड़ी पूछना चाहिए हम बाप को कितना याद करते हैं। अगर समय व्यस्त किया तो ना अपना और ना औरों का कल्याण कर सकते हैं। जो समझाना चाहिए वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाती नहीं है, इसलिए कोई को तीर नहीं लगता है। ये तो सबसे सहज कमाई। मनुष्य रात दिन माथा मारते हैं तब उनकी कमाई होती है। तुम भी घर बैठे खाते पीते रहो, कमाई करते रहो, बाप को याद करते रहो। हाँ, कहाँ कोई में फंसना नहीं चाहिए। न देह में, न देह के संबंधियों में, न देह के पदार्थों में। तुम्हारा तो अंजाम है। बाबा आप जब आवेंगे तो हम और कोई को याद नहीं करेंगे। कोई विकर्म भी नहीं करना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। डायरेक्शन की अवहेलना करेंगे तो गिरेंगे, बहुत थोड़ा पद पावेंगे। अच्छा, गुड नाइट। तीसरा रात्रि क्लास 7 अक्टूबर 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के लिए नई बातें हैं, नई दुनिया के लिए। नई बातों से नई दुनिया बनती है। शास्त्रों में तो वही पुराना ज्ञान है। पुरानी बातें सुनते सुनते पुरानी दुनिया बन गई। ये शास्त्र सा भक्ति मार्ग है। इसको कहा जाता है हियर नो इविल। आगे ये बात बताने के लिए बंदरों को दिखाते थे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, बंदरों का चित्र रख देते थे। अब होगा तो मनुष्यों के लिए ना, जानवर क्या जाने। अभी मनुष्यों का भी बनाते हैं। बाबा ने एक कुमारी का चित्र बनाया था, कौन सा? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, वो कैलेंडर है, उसमें लिखत बहुत अच्छी है। हियर नो इविल ये किसके लिए है? जो मनुष्य पांच विकारों में फंसे हुए हैं। कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, उनके लिए है। ईश्वर सर्वव्यापी है आदि कुछ कहे तो हियर नो इविल। बहुत पुरुष बाबा की तरफ देखते नहीं है। ऐसा न हो कहीं जादू लग जावे, बाबा फिर तुमको सिखाते हैं देखते हुए न देखो। ये छीछी दुनिया है, रावण की पुरी है। इस दुनिया में सब मनुष्य पतित हैं, तो उनको देखते हुए न देखो। अगर देखेंगे, दिल लगाकर देखेंगे, तो उनके संग का रंग लग जाएगा। तुमको तो और तीसरा नेत्र मिला है, शांति धाम सुखधाम को देखो, अपने घर को याद करना, माना देखना। यहाँ इस दुनिया के जो घर हैं वो सब भूल जाओ। ये आत्माएं, ये बच्चे, अपने सुखधाम शांति धाम को याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो सब कब्र दाखिल हो जानी है। कोई नया मकान बनते हुए देखते हैं तो पुराने मकान से ममत्व मिट जाता है। तुम्हारा बाप बेहद के नई दुनिया से दिल जुटाते हैं और इस पुरानी सारी दुनिया से संन्यास दिलाते हैं। बताते हैं ये सब खत्म हो जाना है। एक बाप को ही याद करना है। हू बहू ऐसे याद करना है जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मासूक हूं। दुनिया में एक दो के आशिक मासूक होते हैं ना, तुम सब मेरे आशिक हो, मैं एक मासूक हूं। वो आशिक होते हैं शरीर के ऊपर, विकार की दृष्टि नहीं जाती है। यहां भी विकार की बात नहीं। साढ़े 500 करोड़ आत्माएं आ चुके हैं एक परमपिता परमात्मा बाप की। बाप कहते हैं अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुमको वाणी से परे घर रहना है, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल सो विष्णु कुल बनता है, फिर क्षत्रिय कुल बनेगा, फिर बदलते जावेंगे वैश्य शूद्र कुल बनता रहेगा। मनुष्य तो जानते नहीं कि विष्णुपुरी सत्य को कहा जाता है, जहां लक्ष्मीण का राज्य होता है। बाप कहते हैं मूल बात एक है कि पवित्र बनो और मां में कम याद करो। फिर भी अगर आप पवित्र बनेंगे तो बाप की ग्लानी कराए देंगे। सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार होता है, परंतु वहां सूक्ष्म वतन में कोई बैठा हुआ नहीं होता है। तुम ही संपूर्ण बनने से फिर फरिश्ते बनते हो। अभी भी तुम सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कर सकते हो। ये ब्रह्मा का मनुष्य शरीर है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते होते हैं जिनका साक्षात्कार तुमको होता है। आवेंगे तो सूक्ष्म वतन को क्रॉस नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति घर अभी नाम रख देते हैं। तो इस पर तुमको समझाना चाहिए, ये त्रिमूर्ति मार्ग क्यों रखा हुआ है नाम? गांधी मार्ग रखते हैं, नाम तो रखते हैं ना, वो रास्ता बताने वाला गांधी हुआ है ना, तो त्रिमूर्ति मार्ग है। क्या क्या अर्थ हुआ? जरूर कोई तीन मूर्तियां हुई हैं जिन्होंने संसार को रास्ता दिखाया है। तो तुमको ये समझाना चाहिए, अपना फर्ज है उनसे पूछना। ये तुमने त्रिमूर्ति नाम रखा है, ये किसका यादगार है? तुम तो जानते हो, वो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जैसे ये यादगार है, महिमा तो एक शिव बाबा की होनी चाहिए। त्रिमूर्ति शिव बाबा का स्टैंप्स बनाना चाहिए। तुम जाकर के समझावेंगे भारत को स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है, तो उस बाप की स्टैंप्स छपनी चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। त्रिमूर्ति से भी सारे विश्व को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं। ये बातें सिवाय एक बाप के कोई समझा नहीं सकता। कैसे तुमको पढ़ाते हैं, वंडरफुल बात है, परंतु तुम बच्चों का नाम बाला तब होगा जब गीता की बात सिद्ध हो। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। सर्वधर्म वालों को शिव के चित्र को नमन करना पड़े। बनारस में खास काशी का मंदिर है, बोलते हैं जय शिव काशी विश्वनाथ गंगा, कहते हैं शिव की काशी। विश्वनाथ उसने गंगा लाई, वो भी कहते हैं भागीरथ द्वारा। बनारस में भी गंगा किनारे पर ढेर सन्यासी रहते हैं। समझते हैं शिव शिव कहते गंगा स्नान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर शिव पर बलि चढ़ने से, काशी करवट खाने से समझते मुक्ति हो जाएगी। आ आगे कूद पड़ते थे। कहाँ समझते थे हम शिव बाबा पर बलि चढ़े। बहुत देवियों पर भी मनुष्यों की बलि चढ़ती है। बाद में गवर्नमेंट ने बंद करवाई दिया। बलि चढ़ने को महाप्रसाद समझते थे। ऐसों को आदमखोर कहा जाता है। बाप कहते हैं हमेशा अपन को आत्मा समझ करके बैठो, देह अभिमान छोड़ दो। याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होगी, फिर बहुत सजा खाएंगे। घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते सजा खाते रहेंगे और साक्षात्कार होता रहेगा। इतनी सजाएं खाए, थोड़ा सा पद लेना, उससे फायदा ही क्या होगा। विश्व के मालिक पने की सारी खुशी उड़ जाएगी। तो बाप कहते हैं भूलो मत, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। आत्माभिमानी बन, मुझे याद करते रहो। अभी बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई बिघन नहीं डाल सकेंगे। किस बात में? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने में कोई बिघन नहीं डाल सकेंगे। सात दस सड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो, बुद्धियों बाप के पास लगा रहे। आठ घंटा बाप की सर्विस में रहो। साथ साथ याद भी करना है, चक्कर भी फिराना है, औरों को रास्ता भी बताना है। बाप का परिचय सब अखबारों में पड़ जाएगा। आज भी बाबा ने लिखा है, ये गीता का भगवान का जो चित्र है अखबार में डालो, तुम्हारी पहली पहली जीत इस बात पर होगी। बाकी तब तक क्या होता रहेगा। गीता की बात पर तुम्हारी पहली जीत होगी, उससे पहले है? उससे पहले हार होती रहेगी। तुम्हारी पहली जीत होगी तो तुम अथॉरिटी गाए जावेंगे। तुम उसे पूछेंगे ये किसने बताया, दिखाओ। देखो लिखा हुआ है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति अक्षर भी याद करके डालो और ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता शब्द भी जरूर लिखना है। तो समझेंगे ब्रह्मा भी जरूर होगा। सूक्ष्म वतन में तो कोई अडॉप्ट कर नहीं सकेंगे। ऐसी ऐसी सब पॉइंट्स धारण करके तुमको गांव गांव शहर शहर में सर्विस करनी है। तुम हो गॉडली रूहानी वर्कर्स। परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा, मुझने की बात नहीं है। समझाना चाहिए सत्युग में एक ही धर्म होता है। तुम्हारे पास चित्र भी है, बड़े बड़े म्यूजियम खुलते रहेंगे, बंबई में भी एग्जीबिशन होगी, वहां स्टाल में चित्र रखेंगे, सबको नॉलेज मिलेगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम प्योर बन जाएंगे। कब भी कोई से कुछ पूछना हो तो लिख करके पूछो। ये अविनाशी सर्जन है। ओम शांति।